नमस्कार भारत, आज है 4 मार्च, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6ठे चरण के लिए आज हो रहा है मतदान। चुनौती अच्छे मतदान की,
पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण 60% से ऊपर वोटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो आखिरी बात की जो एक दो चरण हुए, परसेंटेज का जो गिरना है वो अच्छा लक्षण नहीं है।
मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के लिए भी पड़ेंगे वोट। सुनिएगा कि 1987 में कैसे श्रीलंका के जाफना में हेलीकॉप्टर से भारतीय सैनिक एलटीटी से लोहा लेने उतर पड़े थे।
जब ये हेलीकॉप्टर से दोनों ये दस्ता उतर गया 50 लोगों का, और जब इन्होंने वो मार्किंग के लिए गूज लैंप जलाने की कोशिश की तो इन पर बहुत जोर का फायर आया।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में आज वोट डाले जाएंगे। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर आज मतदान है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में वोटिंग हो रही है। आज मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान है। यूपी और मणिपुर दोनों जगहों पर अंतिम चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। फ्रांस में मध्य दक्षिणपंथी रुझान वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्रांसवा फिलों के अभियान प्रबंधक ने उनका साथ छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे से घिरे चुनाव अभियान में ये उनके लिए एक और झटका है। फिलों का साथ छोड़ने वाली बड़ी शख्सियतों में पैट्रिक स्टीफेनिनी नया नाम है। फिलों अपने परिजनों को सरकारी पैसे के भुगतान के घोटाले में घिरे हुए हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कई लोगों ने उनसे चुनाव से हट जाने को कहा है। इसके साथ ही डेमोक्रेट्स और निर्दलियों के गठबंधन ने भी उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया है। फ्रांसवा फिलों अपनी पत्नी और बच्चों को जो काम उन्होंने नहीं किया है उसके भुगतान से इनकार करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी जारी रखेंगे। इराक में इस्लामिक स्टेट के गढ़ मोसुल में संभवतः रासायनिक हथियार से हुए हमले में कम से कम 12 इराकी नागरिक घायल हुए हैं। इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पश्चिमी मोसूल से सरकारी नियंत्रण वाले पूर्वी मोसूल में 2 मोर्टार दागे गए जिससे किसी रसायन की गंध फैल गई। इस कथित हमले में एक 11 साल का लड़का गंभीर रूप से जल गया और उसके शरीर में फफोले पड़ गए, साथ ही उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने कथित रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की निंदा की है। रेड क्रॉस के मध्य पूर्व निदेशक रॉबर्ट मार्दिनी ने बताया कि पीड़ितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
The patients are in a critical condition, but they are now being treated. They have been decontaminated.
पीड़ितों की स्थिति नाजुक है, लेकिन अब उनका इलाज हो रहा है। अस्पताल में उन्हें स्वच्छ किया गया ताकि दूसरे रोगी इससे प्रभावित न हो जाएं। हमारे मेडिकल स्टाफ अस्पताल की मेडिकल टीम की इलाज में मदद कर रहे हैं। रॉबर्ट मार्दिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में सीरिया पर शांति वार्ता का पहला दौर जिनेवा में करीब 1 साल बाद समाप्त हो गया है। मुख्य विपक्षी वार्ताकार नसर अल हरीरी ने कहा कि 8 दिन तक चली बातचीत में कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, लेकिन पिछले दौर की तुलना में ये अधिक सकारात्मक थे, जिसमें राजनीतिक संक्रमण के मुद्दों पर बहुत ज्यादा गहराई के साथ चर्चा हुई। सीरियाई सरकार का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी टिप्पणी के जिनेवा लौट गया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान द मिस्तुरा ने संवाददाताओं से कहा कि एक स्पष्ट एजेंडे पर सहमति बन गई है। सभी लोगों को स्पष्ट हो गया है, अब उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम यहाँ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 को लागू करने के लिए आए हैं। इस पर कोई विवाद है ही नहीं। इसमें समय की पाबंदी को लेकर लक्ष्य निर्धारित हैं। दूसरा, मुझे यकीन है कि हमारे सामने अब एक स्पष्ट एजेंडा है। स्टेफान द मिस्तुरा के शब्द। अमरीका में बर्फ पर होने वाली रेस वर्ल्ड स्नो शूज चैंपियनशिप में शामिल हुए कश्मीर के एक 24 साल के युवक तनवीर हुसैन को नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया है। सेरानेक के पुलिस प्रमुख चार्ल्स पॉटहेस ने बीबीसी को बताया कि तनवीर हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने एक 12 साल की बच्ची का गंभीर चुंबन लिया। पुलिस प्रमुख का कहना था कि ये किसी तरह की जबरदस्ती का मामला नहीं है और न ही लड़की ने कोई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये मामला दोनों की उम्र में जो फर्क है उसे देखते हुए दर्ज किया गया है। पुलिस प्रमुख का कहना था कि घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों की शिकायत के बाद उन्होंने इस मामले की जांच की और उसके आधार पर उन्होंने आरोप दर्ज किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में मतदान के साथ ही 362 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में इन 49 सीटों में समाजवादी पार्टी 27, बहुजन समाज पार्टी को 9, भारतीय जनता पार्टी को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। कहां कहां किन सीटों पर देश व प्रदेश के कई दिग्गजों का राजनीतिक इम्तिहान होना है, पूरी जानकारी के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है और राजनीतिक भाषणों का कथ्य विकास कब्रिस्तान श्मशान से होता हुआ अब घूंघट और बुरके तक पहुंच गया है। वैसे छठे चरण में जहां मतदान हो रहा है उनमें कई जिलों की सीमा बिहार से सटी है। यही वजह है कि इस चरण में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रचार के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी उतरे। हालांकि इस इलाके में सपा नेता मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी आता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रचार में नहीं आए। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ राज्य के दूसरे इलाकों के साथ यहां भी सक्रिय थे तो मऊ के चर्चित विधायक मुख्तार अंसारी जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका प्रचार कार्य उनके भाई और बेटे देख रहे हैं। छठे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की विधानसभा सीटों पर भले ही मतदान नहीं होना है, बावजूद इसके उन्होंने रैलियों और सभाओं में कोई कमी नहीं की। चुनाव जैसे जैसे बीत रहा है भाषणों की भाषा और तरीका भी बदल रहा है। वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण कहते हैं,
अच्छी बात तो ये है कि आखिरी फेज का चुनाव किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती दौर में जो दो पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण 60% से ऊपर वोटिंग हुई, लेकिन जो आखिरी बार के जो एक दो चरण हुए का जो गिरना है वो अच्छा लक्षण नहीं है। हर पार्टी को, हर दल को, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, किसी भी पार्टी के लिए जो है ये डराने का एक काम कर रही है। ये जो फैक्टर है वो डराने का, और हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ, सारी पार्टियां एक दूसरे से डरी हुई।
छठे चरण में जिन 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 27 सीटें मिली थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ को छोड़कर इस इलाके की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मऊ, आजमगढ़, महाराजगंज जैसे कई जिलों में उसका खाता तक नहीं खुला था। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, जबकि दूसरे दलों के सामने सीटें बढ़ाने की चुनौती है। जाहिर है चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तो उसने कई सीटें गठबंधन के चलते कांग्रेस के लिए छोड़ रखी हैं, दूसरे सत्ता में रहते हुए उन्हीं सीटों पर दोबारा जीतना आसान नहीं है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठा चरण, आज होंगे 49 सीटों पर मतदान। कार्यक्रम में सीधे हम चल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी के पास, जो कि इस समय बनारस में हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। सबा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले जी नमस्कार। सुबह बनारस की बहुत प्रसिद्ध होती है और बनारस में सुबह हो रही होगी, आज वोटिंग भी है लेकिन बनारस में वोटिंग नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जिन जगहों पर चुनाव होना है, आपको लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं मुलायम सिंह और इन सब की जो किस्मत है वो दांव पे लग गई है आज?
मुलायम सिंह की किस्मत नहीं, लेकिन
आजमगढ़
जो एक सीट थी जहां से सपा 9-10 असेंबली सेगमेंट में से 9 जीती थी, इस बार सपा के लिए बहुत अच्छा नहीं है सिचुएशन आजमगढ़ में। अच्छा, गाजीपुर जैसा इलाका जहां पे मुख्तार अंसारी सपा में थे, अब वो बसपा में गए हैं, वहां भी वो तो एक जगह है जहां पक्की बात है कि मुस्लिम वोट ज्यादा बसपा में जाएगा और कम सपा में जाएगा। फिर आता है गोरखपुर। गोरखपुर में जरूर भाजपा बेहतर करेगी। तो ये चुनाव, ये 2017 का जो चुनाव है, ये इतना उलझा हुआ है और अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि कोई क्लियर जीत किसी को मिल रही है।
सभा जी, लगातार आप इस चुनाव में दौरा कर रही हैं, तमाम जगहों पर आप गई, कोई हवा किसी के पक्ष में बहती दिखती है या फिर यही कहा जाएगा कि ये पूरी तरह से त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला है और कौन किस पे बाजी मार लेगा अभी कहना मतलब बेकार की बात होगी?
जी बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं सही बात है। मुझे हवा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम लोगों से पूछते हैं ये सवाल, तो तब जो जवाब आता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के खिलाफ बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लेकिन ये नहीं बोलते हैं, और बहुत लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, इसलिए क्योंकि हम सवाल जाके पूछते हैं। ये 2014 क्योंकि उत्तर प्रदेश मेरा होम स्टेट भी है, 2014 में क्लियर था कि लहर थी। अब अगर भाजपा भी बेहतर करेगी तो वो आंकड़ों की वजह से करेगी, डिविजन और उसका खुद का ग्रोथ जो अति पिछड़ी ओबीसी वगैरह में होगा।
वैसे भारतीय राजनीति में मतदाता बटन किस पे जाके दबा देगा इसका पता नहीं चलता है अंत समय तक, और वो तभी पता चलता है कि जब वोटों की गिनती होती है तब पता चलता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही, तमाम चुनावी सर्वेक्षण जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। सभा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की। आज मणिपुर में भी पहले दौर की वोटिंग होनी है, पहले दौर में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी भी चुनाव मैदान में है, और इस पर भी हम आपको जानकारी लगातार हमारी वेबसाइट के माध्यम से कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पूरी दिन भर चुनाव से जुड़ी जानकारियाँ bbchindi.com पर पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। दलित चिंतक और कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कृष्णा किरवले की कल हत्या हो गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। और जानकारी के लिए कार्यक्रम में हम सीधे मुंबई चल रहे हैं अपने सहयोगी अश्विन अघोर के पास। अश्विन, सबसे पहले तो यही बताइए कि प्रोफेसर कृष्णा किरवले जिनकी हत्या हुई है, ये हत्या कहाँ हुई, कैसे हुई और ये कौन है?
कृष्णा किरवले दलित चिंतक थे और मराठी के प्राध्यापक थे। कोल्हापुर में जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है वहाँ मराठी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी है और एक साहित्य के, दलित साहित्य के क्षेत्र में उन्हें एक चिंतक और एक अभ्यासक के रूप में जाना जाता था। कल दोपहर 3:30-4 के करीब उनके कोल्हापुर स्थित निवास स्थान में, राजेंद्र नगर में उनका घर है कोल्हापुर में, वहाँ कुछ 3-4 लोग आए और उनसे उनकी बातचीत चल रही थी, अचानक झगड़ा शुरू हो गया और उनमें से एक ने उनकी हत्या कर दी। उसका उनमें से एक जो प्रीतम पाटिल नामक जो एक कारपेंटर है पेशे से, उसको कोल्हापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी अभी तहकीकात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस द्वारा प्राप्त हुई है उसमें ये पता चलता है कि उन किरवले, कृष्णा किरवले का और प्रीतम पाटिल का कुछ फर्नीचर की खरीद को लेकर डिस्प्यूट का पेमेंट के लिए झगड़ा चल रहा था और उसी के चलते प्रीतम पाटिल ने कृष्णा किरवले की हत्या की, ऐसा पुलिस का प्राथमिक अंदाजा है। आगे जो भी होगा आज तफ्तीश में निकल आएगा। कोल्हापुर क्राइम ब्रांच अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
जी अश्विन अघोर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, दलित चिंतक और कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कृष्णा किरवले की कल हत्या कर दी गई। कार्यक्रम में अब बात हम करते हैं, अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। अमर शर्मा, अखबार अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो ये बताइए कि आज के अखबार क्या कह रहे हैं और शीर्ष खबरें क्या क्या हैं?
जी देखिए, आप मेरे हाथ में जनसत्ता अखबार और इसकी जो पहली खबर है जिसे अखबार ने करीब 4 कॉलम में छापा है, इसमें दलाई लामा की तस्वीर के साथ ही है कि इसकी हेडिंग है, दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर चीनी एतराज खारिज। भारत ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है चीन के एतराज करने पर, क्योंकि दलाई लामा करीब 8 सालों के बाद 4-13 अप्रैल तक पूर्वोत्तर के इस राज्य में रहेंगे और वो अपनी यात्रा में जा रहे हैं, तो इस पर चीन हमेशा एतराज जताता रहा है। इससे पहले रिचर्ड वर्मा भी जो अमेरिका के जो थे यहाँ पर प्रतिनिधि, वो भी वहाँ गए थे, तो उसका कहना है कि दरअसल वो दावा ठोकता रहा है तवांग दक्षिणी चीन के हिस्से में।
हाँ, इसके अलावा और क्या खबरें?
दैनिक जागरण अखबार की जो पहली खबर है जो आप देख सकते हैं कि किसानों की मौत पर मुआवजा देना समस्या का हल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान 3 सदस्यों वाली खंडपीठ ने ने कहा है, टिप्पणी दी है, और अदालत ने चिंता जताई है कि सरकार की गलत दिशा में भटक रही है, इसे एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है कि किसान आत्महत्या करता है तो उसके बाद सरकार सिर्फ मुआवजा देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है और उसे कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है साथ में कि आप कह देते हैं गन्ना किसानों को आप गन्ना उगाइए और किसी दूसरे किसान को जो जो उगाता उसे कहते हैं आप वो उगाइए, और कई बार होता है उन्हें अपनी कीमत नहीं मिल पाती है, फसल बर्बाद हो जाता है कई, तो किसानों की फसल की एक निश्चित कीमत तय होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
जी।
और दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद
न्यूनतम वेतन की मंजूरी,
जी न्यूनतम वेतन नए उपराज्यपाल आए, इनकी मंजूरी के बाद जो दिल्ली सरकार का ये जो पुराना प्रस्ताव था वो पास हो गया है।
मैं और देख रहा हूँ अमर उजाला में जो शीर्ष खबर है, बेटियों की संख्या में शहरों से आगे गांव,
जी मैं उस खबर को पूरी कर दूं कि इसमें 37% की वृद्धि हुई है और LG की मुहर के बाद, और दिल्ली में अब जो ये न्यूनतम मजदूरी होगी वो 13,000 रुपए तय की गई, 13,350 बेटियों की संख्या में शहरों से आगे है। ये जो नया सर्वे है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, इसके मुताबिक है कि ग्रामीण भारत लिंग अनुपात के मामले में अभी भी शहर से काफ़ी आगे है, मतलब ओवरऑल मामले में लड़कियों की स्थिति के मामले में गांव में अभी भी लड़कियों का ज़्यादा सम्मान है, इस खबर से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा, और अब हम आपको बताते हैं कि आज BBC इंडिया बोल में क्या है चर्चा का विषय।
BBC इंडिया बोल।
उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता ने केरल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का सिर काटने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे पहले बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हत्या की राजनीति करने वालों के खिलाफ जनतांत्रिक देश का कानून बेबस साबित क्यों? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। अपनी राय जाहिर करने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो शाम को हमें आपके टेलीफोन कॉल का इंतजार रहेगा, और अब विवेचना। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशन बाय द इंडियन मिलिट्री, जिसमें उन्होंने 1987 में श्रीलंका में LTT के मुख्यालय जाफना में भारतीय सैनिकों के हेलीड्रॉप करने की कहानी को रोमांचक ढंग से बयां किया है। इस हमले में भारतीय सैनिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वो किसी तरह से लड़ते हुए वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। ऑपरेशन पवन के पहले 2 दिनों की दिल दहला देने वाली कहानी बयां कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
भारतीय सेना में एक रवायत है कि वहां जब कमांडोज को ट्रेन किया जाता है तो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के सभी गुरों के साथ साथ सांप को मारकर खाना भी सिखाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि अगर एक कमांडो ने सांप को मारकर खा लिया तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। 11 अक्टूबर 1987 की रात पलाली श्रीलंका में मौजूद 10 पैरा कमांडोज को जाफना विश्वविद्यालय में LTT के मुख्यालय पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई। उड़ान भरने से पहले हुई सभा में कमांडोज ने अपना युद्ध नारा दुर्गे भवानी की जय लगाया और रात 1 बजे 2 MI हेलीकॉप्टरों ने 50 सैनिकों के साथ जाफना के लिए उड़ान भरी। वो मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अभियान को गुप्त रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सारी बत्तियां बुझा दी गई थीं। मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री के लेखक और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह बताते हैं।
एक फौजी टर्म होता है पाथ फाइंडर, तो जो पैरा कमांडोज थे वो पाथ फाइंडर थे। इस ऑपरेशन के लिए मेजर ऑपरेशन सिखलाई की यूनिट ने कंडक्ट करना था। पाथ फाइंडर का काम ये होता है कि आप जाकर उस जगह को उतरने के बाद मार्क करें और वहाँ पर बताएं कि भाई इस जगह उतरने के लिए ठीक है। तो दो दो के टर्न्स में 2 हेलीकॉप्टर्स की वेव्स आके उतरनी थी। पहले 2 हेलीकॉप्टर जब उड़ने शुरू हुए और वो जब मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से उड़े तो वहाँ से फायर आया, पर वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ में इतना सुनाई नहीं पड़ा और स्पोरैडिक फायर था। वो फायर की वजह से ये दोनों हेलीकॉप्टर उतर गए, पर जब ये हेलीकॉप्टर से दोनों ये दस्ता उतर गया 50 लोगों का, और जब इन्होंने वो मार्किंग के लिए गूज लैंप जलाने की कोशिश की तो इन पर बहुत जोर का फायर आया। तो मेजर शेनॉन ने वहीं पर डिसीजन लिया, वहीं निर्णय लिया कि भाई मैं ये नहीं जला सकता हूँ कि अगर मैं इनको जलाऊंगा तो इसकी वजह से ही हम हमारे ऊपर ही निशाना लगेगा और हम मारे जाएंगे। तो उसकी वजह से उन पर जो दूसरा जो हेलीकॉप्टर की जो टीम आई उसको वो निशाने दिखे ही नहीं जिनको देख करके उनको उतरना था, उसकी वजह से वो वापस चले गए। और तब तक ये उम्मीद ये थी कि दूसरी टीम आएगी, तीसरी टीम आएगी, पर फिर से जो पहला दस्ता था वह पहले दो हेलीकॉप्टर का दस्ता वापस आता है और उस बार उस पर बहुत ही ज़बरदस्त गोलाबारी होती है। उसके हेलीकॉप्टर्स के अंदर छेद हो जाते हैं, उनके पायलट्स बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पर इसके साथ सिखलाई के 31 जवान आए हुए थे जो उतरते हैं।
जैसे ही लैंडिंग हुई, टीम लीडर मेजर शिवनान सिंह ने पाया कि उन पर LTTE की ओर से ज़बरदस्त फायरिंग रही है जिसे वो हेलीकॉप्टर के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा, उस समय रात के 1:20 हुए थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मार्कर से लैंडिंग एरिया में रोशनी पैदा करें ताकि वहां दूसरे हेलीकॉप्टर उतर सकें। जैसे ही उन्होंने ये करने की कोशिश की उन पर जबरदस्त फायर आया। नतीजा यह रहा कि उन्हें रोशनी करने की योजना त्यागनी पड़ी। जब तीसरा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उसे उतरने की जगह ही नहीं दिखाई दी और वो 53 कमांडोज के साथ वापस पलाली लौट गया। इसके बाद शिवनान सिंह और उनके कमांडोज ने LTTE के ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जो वहां के पॉलिटेक्निक के एक प्रोफेसर का घर था।
उनको एक प्रोफेसर मिलता है जो कि जाफना यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा था। उस प्रोफेसर के घर में जाके ये उससे पूछते हैं कि भाई LTTE कहाँ है, तो वो कहता है कि भाई देखिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, LTTE तो यहाँ नहीं, LTTE तो दूसरी दिशा में है। पर उस दिशा में जाने की बात मानने से पहले ये उस प्रोफेसर से पूछते हैं कि आप मुझे 3 या 4 रास्ते बताइए उस जगह जाने के जहाँ आप बोल रहे हैं कि LTTE का हेडक्वार्टर है, क्योंकि इनको शक था कि शायद एक ट्रैप हो सकता है जिसमें कि ये फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और साथ में ये कहते हैं कि हम आपके दामाद को बंदूक की नोक पर लेके चलेंगे कि अगर हमारे ऊपर गोली आई कहीं से, अगर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की तो आपके दामाद की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जैसे ही वो उसको लेके चलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है, LTTE के फाइटर्स इन पर गोली चलाते हैं और जो जवान जो कि राइफल पीछे लेके चल रहा था उस दामाद के पीछे, वो उसके दामाद का सर उड़ा देता है।
जैसे ही यहां से कमांडोज आगे बढ़े, 70 गज की दूरी पर एक झोपड़ी से उनके ऊपर जबरदस्त फायर आया। भदौरिया ने अपने रॉकेट लॉन्चर से उस झोपड़ी पर 3 फायर किए। फायरिंग तो रुक गई लेकिन उसके अंदर रह रही औरतों और बच्चों की चीखें दूर तक सुनी जा सकती थी। भदौरिया और उनके कमांडो एक और घर में घुसे और वहां मौजूद हर व्यक्ति को मार डाला। तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं।
ये लोग पहली जो इनको बिल्डिंग जो इनको इलाका मिला उस इलाके में घुसने लगे और उस इलाके में घुसे तो इनके ऊपर मेजर शेनॉन और कैप्टन भदौरिया के ऊपर एक व्यक्ति अपनी एक LTTE का फाइटर आया जो कि राइफल से फायर करते हुए आया। इन्होंने उसको इमीडिएटली गोली मार दी, इनके ऊपर पूरे खून के चिथड़े विथड़े भी आ गए और पूरा खून इनकी यूनिफॉर्म पर भी आ गया। उसके बाद इन्होंने हर घर में घुस के उसको खाली साफ़ करने की कोशिश की और जो भी बड़ा बूढ़ा जो भी इनके सामने पड़ा उसको इन्होंने, क्योंकि उस वक्त इस तरह का माहौल था, हर तरफ से गोलीबारी चल रही थी, इन्होंने उन घरों में पोजीशन लेना चाहते थे तो इन्होंने उस तरह से लोगों को उड़ा दिया। कैप्टन रणबीर भदौरिया एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पर रसोई घर में एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ, 2 साल का बच्चा जो कि उनकी महिला की साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था, वो खड़ा था, तो इंस्टिंक्टिवली उन्होंने गोली चलाई और जिससे कि उस महिला की मौत हो गई। पर कैप्टन भदौरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बच्चे की ओर गोली चला सकें क्योंकि उनका भी, कैप्टन भदौरिया का खुद का बच्चा भी उस वक्त उसी उम्र का था, तो उन्होंने अपने बड़ी जो कि एक ट्राइबल थे बिहार से उनकी ओर देखा और उनके बड़ी ने उसको, उस 2 साल के बच्चे को गोली मार दी।
मैंने आजकल सीतापुर में रह रहे कर्नल रणबीर भदौरिया से संपर्क कर इस घटना का विवरण मांगा।
जब एक दफे फायर खुल जाता है आदमी देखता नहीं है किधर गोली जा रही है क्योंकि उसकी खुद की कैजुअलिटी इतनी हो चुकी होती है, वो सिर्फ अपना जुनून है वो निकालता है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई इनको किसी को मारो क्या करो, तो मैं बाहर की तरफ निकल आया। जब वापस आया तो देखा कि वो महिला और वो बच्चा दोनों मरे हुए थे। खैर जंग में ये सब चीजें हो जाती हैं और उसका दुख हमेशा रहता है। कई दफे अकेले में बैठ के सोचता हूँ तो लगता है कि क्या सच था क्या गलत था, पर इसमें तो कहते हैं जब गेहूं पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिसता ही है।
इस बीच मेजर शिवनान सिंह को ख्याल आया कि पलाली में 54 आर्टिलरी ब्रिगेड मौजूद है और उनके पास तोपे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्टिलरी फायर की मांग की उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उन्हें पता चला कि तोपे तो हैं लेकिन उनका गोला बारूद भारत से आया ही नहीं है। श्रीलंका की सेना ने उन्हें कुछ मोर्टर्स गन उपलब्ध कराई, लेकिन उनके गोले खुद भारतीय सेना के ऊपर गिरे। मैंने कनेक्टिकट अमेरिका फोन कर मेजर जनरल शिवनान सिंह से संपर्क किया।
हमने थ्योरी में पढ़ा था कि गन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं था। हमारा उनके साथ रابطہ रेडियो के ऊपर हो गया और हमने उनसे फायर मांगा। जब उनका हमें ये भी नहीं पता लग रहा था, हमने उनसे कहा स्मोक फायर करो ताकि हम देख सकें कहाँ हो रहा है। तो हमारे कुछ लड़कों को हमने छत पे चढ़ा दिया, मैं नीचे बैठा हुआ था। उन्होंने बताया जी गोला यहाँ पे गिरा है तकरीबन इतनी दूर। तो हमने उनको जो था वो नॉर्थ साउथ कह के उनको बोला भी 50 गज जो है आप हमारी तरफ साउथ में गोला गिराइए। लेकिन मुझे इस वक्त ये पता नहीं था कि मैं 25 गज भी कह सकता हूँ। मैंने 50 गज कहा क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस में करा करते थे। तो जो 50 गज वाला गोला था वो तकरीबन उसी घर के ऊपर आके गिरा जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। इत्तफाक से घर के ऊपर नहीं गिरा, बाहर की तरफ गिरा। और हमारे 3 जवान जिन्होंने वहाँ पोजीशन ले रखी थी उसमें से 2 की जो है जान, मतलब एक तो बुरी तरह से जख्मी हो गया और एक के पैर कट गए उसमें।
लगभग 40 भारतीय कमांडो इस ऑपरेशन में मारे गए। कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ और लुंगी पहने LTTE के लड़ाकों ने बुरी तरह से भारतीय सैनिकों को परेशान किया। मैंने मेजर जनरल शिवनान सिंह से पूछा कि आप LTTE के लड़ाकों के युद्ध कौशल को किस तरह से आंकते हैं?
पहली बात तो ये है कि वो मरने से नहीं डरते थे। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी लड़ाई में जो नौजवान फौज है वो आपको जिताती है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो नहीं जिताते हैं। लड़ाई के अंदर एक्सपीरियंस वो होते हैं जो पहली लड़ाई में नहीं मरे होते हैं और वो इस लड़ाई में भी मरना नहीं चाहते। आप कोई लड़ाई देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, शुरू में नतीजे नहीं आए हैं। जब एक्सपीरियंस लोग पीछे रह गए हैं और नौजवान आए हैं जिनको कि इस बात का पता ही नहीं होता कि मौत क्या होती है, वो लोग लड़ाई जितवाते हैं। तो LTTE में पहली बात तो ये थी कि वो मरने से नहीं डरते थे, चाहे वो बड़ा था चाहे छोटा था। दूसरी बात यह कि उनका लीडरशिप के ऊपर पूरे यकीन था और उनकी लीडरशिप ने उनको बेहतरीन हथियार और बेहतरीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे। वो पब्लिक में मर्ज हो सकते थे, उनको इस बात का पूरा यकीन था कि हम हथियार छोड़ देंगे और मर्ज हो जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा हम कौन है। एंड एज फार एज टैक्टिक्स इज कंसर्न, तो गोरिल्ला टाइप की लड़ाई तो वो लड़ी रहे थे वहाँ पे काफी अरसे से श्रीलंकन आर्मी के साथ। उनको रास्ते पता थे, उनको ये टैक्टिक्स पता थी, उनको कहाँ छिपना है ये पता था, कहीं पे भी जाए उनको खाना मिलता था। तो उनको कोई तकलीफ इस तरह से नहीं थी, सिवाय इस बात के कि उनको हो सकता है मरने का खतरा हो, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मरने से डरते नहीं थे।
ये तो रही ऑपरेशन पवन के पहले 2 दिनों की कहानी। इसके बाद भारतीय सेना वहां 3 सालों तक रही। जब वो 1990 में भारत लौटे तब तक उनके 1155 जवान मारे जा चुके थे। आज पलाली हवाई अड्डे पर काले ग्रेनाइट का एक स्मारक बना हुआ है उन भारतीय सैनिकों की याद में जिन्होंने 12 अक्टूबर 1987 को उस ऑपरेशन में भाग लिया था। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
रेहान फजल की विवेचना यदि आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो bbchindi.com पर ये उपलब्ध है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सौर तूफान के बारे में सनसनीखेज वैज्ञानिक खोज और भारत में बंद पड़ी सोने की खदानों में दबे हुए दशकों पुराने रिसाइकिल स्टील पाइप का क्या कोई रिश्ता हो सकता है, क्या कोई संबंध हो सकता है? बहुत बड़ा संबंध है। दरअसल 3,700 से ज़्यादा पाइप एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज में उपयोगी साबित हुए हैं। कैसे, भारत ने कैसे ये जुगाड़ किया, इस खबर को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए और वहां आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में आज वोट डाले जाएंगे। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर आज मतदान है। फ्रांस में मध्य दक्षिणपंथी रुझान वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्रांसवा फिलों के अभियान प्रबंधक ने उनका साथ छोड़ दिया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे से घिरे चुनाव अभियान में ये उनके लिए एक और झटका है। इराक में इस्लामिक स्टेट के गढ़ मोसुल में संभवतः रासायनिक हथियार से हुए हमले में कम से कम 12 इराकी नागरिक घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में सीरिया पर शांति वार्ता का पहला दौर जिनेवा में करीब 1 साल बाद समाप्त हो गया है।
अमेरिका में बर्फ पर होने वाली रेस वर्ल्ड स्नो शू चैंपियनशिप में शामिल हुए कश्मीर के एक 24 साल के युवक तनवीर हुसैन को नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम को 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।